My dear brothers,
मेरे प्यारे भाइयों, जनरल कॉन्फ्रेंस के इस कहानी दी सेशन के लिए पूरी दुनिया में इकट्ठे होने के लिए आपका शुक्रिया। आप जहां भी हैं, आपकी मौजूदगी अपने कहानी दी भाइयों के साथ मिलने और नजात दहिंदा मसीह की खिदमत और उसकी ताजीम करने की ख्वाहिश को जाहिर करती है। अक्सर हम अपनी जिंदगी को उन वाकयात से नापते हैं जो हमारे जहन और दिल पर गहरा असर छोड़ते हैं। मेरी जिंदगी में भी ऐसे काफी वाकयात हैं। उनमें से एक 1989 में रूनुमा हुआ जब मैंने सदर एज़रा टेफ बेंसन का एक अहम खिताब घमंड से खबरदार रहो सुना। इसके शुरू में कहा गया था कि ये मौजूद सदर बेंसन के लिए काफी देर से परेशानी का बायस था। मैंने पिछले कुछ माह में ऐसा ही बोझ महसूस किया है। रूह ने मुझे हिदायत दी है कि मैं सदर बेंसन के 21 साल पुराने पैगाम की गवाही दूं। हर इंसान घमंड के गुनाह से आजमाया जाता है। इससे कोई भी नहीं बचता और कुछ ही इस पर गालिब आते हैं। मैंने जब अपनी बीवी को बताया कि मैं इस मौजू पर बात करूंगा, तो उसने मुस्कुराकर मजाहिया अंदाज में कहा, अच्छा है कि तुम ऐसे चीज के बारे में बात कर रहे हो जिसके बारे में तुम जाती तौर पे जानते हो। मुझे याद है कि सदर बेंसन के पैगाम का ये असर भी हुआ कि कलीसिया के मेंबरान ने ये कहना भी छोड़ दिया कि मैं अपने बच्चों या मुल्क या फिर अपने काम में फख्र महसूस करता हूँ। हमने फख्र के लफ्ज को अपने ज़खीरा अल्फाज से निकाल दिया। सहाफ़ में रास्त और अच्छे लोगों की बहुत सी मिसालें हैं जो रास्ते में खुशी और इसके साथ ही खुदा की भलाई से जलाल पाते हैं। हमारे आसमानी बाप ने बेटे का तारुफ जिससे मैं खुश हूँ के अल्फाज से करवाया। आलमा इस बात से खुश था कि वो खुदा के हाथ में उसका आला एकार हो। पौलुस रसूल क्रीसिया के मेंबरान के ईमान से खुश हुआ और अजीम मिशनरी एमन अपने और अपने भाइयों की मिशनरी कामयाबियों से खुश हुआ। मेरा यकीन है कि पुरफखर और मगरूर होने में फर्क है। मैं काफ़ी चीज़ों में पुरफ़ख्र हूँ। मुझे अपनी बीवी बच्चों और पोते पोतियों पर फ़ख्र है। मुझे कलीसिया के नौजवानों पर फ़ख्र है और इनकी अच्छाई की वजह से मैं खुश हूँ। मुझे अपने ईमानदार भाइयों पर फ़ख्र है। मैं आपके शाना बशाना बतौर कहानती हामिल खड़े होने में फ़ख्र महसूस करता हूँ। तो फिर इस किस्म के फ़ख्र और सदर बेंसन के बताए गए आलमी गुनाह में क्या फर्क है? फखर जब घमंड बन जाए तो गुनाह है, जैसे सदर बेंसन ने कहा, क्योंकि ये हमें खुदा और इंसान के खिलाफ उभारता है। घमंड का गुनाह अपनी तय में मुआजने या मुकाबले का गुनाह है। इसके शुरू में ही हम ये कहते हैं, देखो मैंने कैसे बड़े काम किए हैं, और हमेशा ख़त्म ऐसे होता है, इसलिए मैं तुमसे बेहतर हूँ इन कामों की वजह से। जब हमारे दिन घमंड से भर जाते हैं तो हम दो बड़े हुक्म तोड़ते हैं, खुदा और पड़ोसी से मोहब्बत की बजाय हम जाहिर करते हैं कि हम आईने में नज़र आने वाली सूरत की ताज़ीम और उसी से मोहब्बत करते हैं। घमंड खुद को दूसरों से बेहतर समझने का गुनाह है। बहुत सों के लिए ये वो कटारा है जिसमें हम रहकर वो हसद, लालच और तकबर को वाजिब ठहराते हैं। ये एक तरह से इब्तदाई गुनाह है। घमंड की वजह से लूसीफर, जो सुबह का शहजादा था और खुदा की हजूरी में पुररसूख था, गिराया गया। अगर घमंड एक को जो बहुत काबिल था गिरा सकता है, तो क्या हमें अपनी रूह को परखने की जरूरत नहीं? घमंड एक कैंसर है, यह गुनाह का दरवाजा है जो दूसरी इंसानी कमजोरियों की तरफ ले जाता है। दरअसल ये कहा जा सकता है कि बाकी तमाम गुनाह घमंड का ही जहूर हैं। इस गुनाह की बहुत सी सूरतें हैं। बहुत सों को ये अपने आप में कमाल, कामयाबी, दौलत और रुतबा दिखाता है। वो उन बरकात की वजह से अपने आप को चुना हुआ और दूसरों से बेहतर समझते हैं। ये मैं दूसरों से ज्यादा खास हूं सोचने का गुनाह है। इसकी तह में सराहे जाने की ख्वाहिश का गुनाह है। ये खुद तमजीदी का गुनाह है और बाकियों के लिए ये हसद बन जाता है। वो दूसरों को जो उनसे बेहतर या ज्यादा दर्जा या अमलाक रखते हैं नफरत से देखते हैं। वो नाराजगी से अपने आप को बेहतर जाहिर करने के लिए दूसरों को तकलीफ पहुंचाते और कमतर साबित करते हैं। जब दूसरे ठोकर खाते हैं तो ये दिल ही दिल में खुश होते हैं। शायद घमंड के गुनाह को देखने के लिए खेल के मैदान से बेहतर कोई जगह नहीं। मुझे खेल में शमूलियत और देखने का शुरू से ही शौक है, मगर मैं ये इकरार करता हूँ कि बाज़ दफ़ा खेल में मुरव्वत की कमी देखकर शर्मिंदगी होती है। कैसे मुमकिन है कि आमतौर पर रहम दिल इंसान मुखालिफ टीम और उसके शायकीन के लिए गुस्से और नफरत से भर जाते हैं। मैंने खेल के शायकीन को मुखालिफ टीम के बारे में बुरा कहते और करते देखा है। वो एक कमजोरी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। वो इस नफरत को टीम और से ताल्लुक रखने वालों के लिए रवा समझते हैं। और जब मुखालिफ पर मुसीबत आती है तो वो खुश होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, बदकिस्मती से अक्सर हम ये रवैया अवामी तौर पर हुकूमत, नस्लियत और मजहब में भी देखते हैं। कहानत में मेरे भाइयों और नर्म मिजाज मसीह के पैराकारों, क्या हमें उससे बेहतर मयार अपनाने की जरूरत नहीं? कहानत के हामिल होने की हैसियत से हम जान लें कि सब खुदा के बच्चे एक ही टीम में हैं। जिस्मानी जिंदगी हमारा मैदान है। हमारा गोल आसमानी बाप और उसके सब बच्चों से प्यार करना है। यहाँ पर हम इस उसके कानून के मुताबिक रहने और उसकी बादशाही की तामीर के लिए हैं। हम यहाँ पर तामीर करने, बढ़ाने और आसमानी बाप के तमाम बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए हैं। जब मुझे जनरल अथॉरिटी की बुलाहट मिली तो मुझे बुजुर्ग भाइयों से सीखने का मौका भी मिला। एक दिन मैं सदर जेम्स ई फास्ट को एक स्टेक कॉन्फ्रेंस में लेकर गया। गाड़ी में सदर फाउंस ने मुझे मेरी बुलाहट के बारे में सिखाया। उन्होंने बताया कि कलीसिया के मेम्बरान बहुत मेहरबान हैं, खास तौर पर जनरल अथॉरिटीज के साथ। उन्होंने कहा कि वो तुमसे मेहरबानी से पेश आएंगे और तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कहेंगे। फिर उन्होंने हंसकर कहा, टीटर, इसका शुक्र गुजार होना, मगर इस पर इन्हसार ना करना। इसमें हम सब के लिए सबक है। हमें इन चीजों पर इन्हसार नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में। हमें अपनी सेहत, दौलत और इमलाक के लिए शुक्रगुजार तो होना चाहिए, मगर जब हम इन पर इन्हसार करना शुरू कर देते हैं, जब हम अपने रुतबे के बारे में हर वक्त सोचते, اپنی ہی اہمیت پر توجہ مرکوز کرتے اور ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے کیا سوچتے اور کہتے ہیں، تو تب مصیبت کا آغاز ہوتا ہے، تب گھمنڈ ہمیں بد اخلاق بنانا شروع کر دیتا ہے۔ کلام میں گھمنڈ کے بارے میں کافی انتباہ دی گئی ہے۔ تکبر سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے، لیکن مشورت پسند کے ساتھ حکمت ہے۔ پطرس رسول کہتا ہے، خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ مارمن نے بتایا، خدا کے حضور فروتن دلوں کے سوا اور کوئی بھی مقبول نہیں۔ خدا اپنے مقاصد کے لیے کمزوروں کو چنتا ہے تاکہ طاقتوروں کو منتشر کرے۔ خدا یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم اس کے کام میں اس کے ہاتھ کو دیکھیں اور آدمی پر بھروسہ نہ کریں۔ ہم خداوند اور نجات دہندہ مسیح یسوع کے خادم ہیں۔ ہمیں کہانت اس لیے نہیں دی گئی کہ لوگوں کے سے سجدے اور تعریف پائیں۔ ہم یہاں کام کے لیے آئے ہیں، یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہم اپنی تعریف نہیں بلکہ خدا کی تعریف اور جلال چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم کہانت راست بازی سے استعمال کریں تو خدا ہماری کوششوں سے ایک بڑا اور عظیم کام سامنے لا سکتا ہے۔ ہمیں موسیٰ کی طرح یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان خود کچھ نہیں مگر خدا میں سب کچھ ممکن ہے۔ اس میں باقی کی طرح مسیح ہمارے لیے مثال ہیں۔ جبکہ لوسیفر نے باپ کے منصوبے کو بدلنا اور اپنے لیے عزت چاہی، نجات دہندہ نے کہا، باپ تیری مرضی پوری ہو اور جلال ہمیشہ تیرے لیے ہی رہے۔ اپنی بیش بہا قابلیت کے باوجود نجات دہندہ حلیم رہا۔ بھائیو، ہم خدا کے بیٹے کی طرز پر دی گئی کہانت رکھتے ہیں۔ یہ انسان کو دی گئی اس لیے دی گئی ہے تاکہ خدا کا کام زمین پر کرے۔ اس قوت کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں مسیح کی طرح بننا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسیح کی طرح باپ کی مرضی کو پورا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کی طرح ہم تمام جلال باپ کو دیں جیسے مسیح نے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسیح کی طرح دوسروں کی خدمت میں کھو دیں جیسے مسیح نے کیا۔ گھمنڈ کہانت کی قوت کو بند کر دیتا ہے اور حلیمی اس قوت کو کھول دیتی ہے۔ تو ہم اس عام اور تباہ کن گناہ پر کیسے غالب آئیں اور کیسے حلیم بنیں؟ گھمنڈی ہونا تقریباً ناممکن ہے جب ہمارے دل محبت سے معمور ہوں۔ اس کام میں کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا جب تک وہ حلیم اور محبت سے بھرا نہ ہو۔ جب ہم اس دنیا کو مسیح کی پاک محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تب ہم حلیمی کو سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ حلیمی اپنے آپ کو نیچا دکھانا ہے۔ حلیمی کا مطلب اپنے آپ کو کمتر، بے ایمانی اور کم قیمت سمجھنا نہیں ہے، نہ ہی ان تحفوں کا انکار ہے جو خدا نے ہمیں دیے۔ حلیمی اپنے آپ کو کم سوچ کر نہیں بلکہ اپنے بارے میں کم سوچ کے سوچنے سے آتی ہے۔ یہ اس وقت آتی ہے جب ہم خدا اور انسان کی خدمت کرتے ہوئے اپنے دنوں کو گزارتے ہیں۔ حلیمی ہماری توجہ دوسروں کی طرف اور آسمانی باپ کی مرضی کی طرف دلاتی ہے۔ گھمنڈ اس کے برعکس ہے۔ گھمنڈ کی قوت کا ذریعہ خود غرضی کے گہرے گڑے ہیں۔ جس وقت ہم اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ کر دوسروں کی خدمت شروع کر دیتے ہیں، हमारा घमंड कम होना शुरू हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, कितने जरूरतमंद लोग हैं जिनके बारे में हम अपनी जगह सोच सकते हैं, और मेहरबानी से अपने बीवी और बच्चों को ना भूलें। बहुत से और तरीके हैं जिनमें हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं। हमारे पास अपने आप में मशगूल रहने का वक्त नहीं है। जब मैं हवाई जहाज का कप्तान था तो मेरा एक पसंदीदा पेन था। इसको ऊपर से थोड़ा सा घुमाने से मैं चार में से एक रंग चुन सकता था। इस पेन ने कभी शिकायत नहीं की कि मैंने लाल इंक क्यों इस्तेमाल की नीली के बजाय। उसने कभी नहीं कहा कि रात 10 बजे के बाद मैं ना लिखना नहीं चाहता, या गहरी धुंध या बहुत ऊंचाई में मुझसे ना लिखो। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ मुझसे अहम दस्तावेज के लिए इस्तेमाल करो। बड़े भरोसे से वो हर काम, अहम या गैर अहम, करता जिसकी मुझे जरूरत थी। वो हमेशा खिदमत के लिए तैयार था। इसी तरह हम खुदा के हाथ में औजार हैं। जब हमारा दिल दुरुस्त है तो हम ये नहीं कहते कि ये काम मेरी काबिलियत से बाहर है। जो भी हमसे मांगा जाता है हम खुशी से खिदमत करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा हमारी काबिलियत से कहीं बढ़कर हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। मैं इख्तिताम में सदर अजरटाफ बेंसन के 21 साल पुराने अल्फाज इस्तेमाल करूंगा। घमंड सियोन की राह में बड़ी रुकावट है। हमें अपने आप से शुरू करके घमंड पर गालिब आना है। हमें रूह की तरगीब के हवाले होना और मगरूर और नफसानी आदमी को तर्क करना और मसीह के कफारे के वसीले से मुकद्दस बनना है, और बच्चे की मानद हलीम, ताबेदार और साबिर रहना है। खुदा सिर्फ हलीम लोग चाहता है। मुबारक वो है जो बगैर मजबूरी के हलीम है। हम हलीम होने का चुनाव करें। मैं जानता हूं कि हम ये कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हम मसीह की तरह लोगों की तारीफ और ताजीम मांगने की बजाय उनकी खदमत करें। ये मेरी दुआ है कि हम घमंड को पहचानें और अपने दिलों से निकालें, और उसकी जगह रास्तबाजी, अच्छाई, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हलीमी को जगह दें। यीशु मसीह के मुकद्दस नाम में आमीन।